अप्रैल 2020 की प्रहरी दुर्ग अध्ययन लेख 14। इस लेख का अध्ययन 1 से 7 जून के दौरान किया जाएगा। विषय उत्तर से हमला। ये लेख यूएल 1 के 6 पर आधारित है, जहां लिखा है, मेरे देश पर एक ताकतवर राष्ट्र ने हमला कर दिया है। गीत 95, बढ़ती है रोशनी सच्चाई की। लेख की एक झलक। यूएल अध्याय 1 और 2 में दी गई भविष्यवाणी के बारे में हम सालों से यही मानते आए हैं कि ये भविष्यवाणी प्रचार काम के बारे में है और हमारे समय में पूरी हो रही है। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस भविष्यवाणी के बारे में हम जो मानते थे, अब उसे बदलने की जरूरत है। ऐसा कहने के 4 कारण इस लेख में बताए जाएंगे। पैराग्राफ 1। सवाल क, भाई सीटी रसल और उसके साथी किस तरीके से बाइबल का अध्ययन करते थे? सवाल ख, ये क्यों एक अच्छा तरीका था? 100 साल पहले भाई सीटी रसल और उसके कुछ साथी एक साथ इकट्ठा होकर बाइबल का अध्ययन करने लगे। वो जानना चाहते थे कि बाइबल में यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, मरे हुओं की दशा और फिरौती के बारे में असल में क्या बताया गया है। उन बाइबल विद्यार्थियों का अध्ययन करने का तरीका बहुत सरल था। उनमें से कोई एक जन एक विषय पर सवाल करता और फिर सब लोग उस सवाल से जुड़ी हर आयत पर खोजबीन करते। खोजबीन से जो भी जानकारी मिलती थी उसे वो लिखकर रखते थे। यहोवा की मदद से उन्होंने बाइबल की कई सच्चाइयों को सही सही समझ लिया। उन्होंने जिन सच्चाइयों का पता लगाया उन्हें आज भी हम मानते हैं। पैराग्राफ 2। सवाल, भविष्यवाणियों को सही सही समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ समय बाद उन बाइबल विद्यार्थियों ने पाया कि बाइबल की शिक्षाओं को समझना तो आसान है, मगर बाइबल में भविष्य के बारे में जो लिखा है उसे समझना यानी भविष्यवाणियों को समझना आसान नहीं है। ऐसा क्यों है? एक वजह यह है कि भविष्यवाणियां तब अच्छी तरह समझ आती हैं जब वो पूरी हो रही होती हैं या फिर पूरी हो चुकी होती हैं। एक और वजह यह है कि हमें एक भविष्यवाणी को सही सही समझने के लिए कुछ ही आयतों पर नहीं बल्कि पूरी भविष्यवाणी पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कुछ ही आयतों पर ध्यान देंगे तो हम भविष्यवाणी का गलत मतलब निकाल बैठेंगे। ऐसा मालूम पड़ता है कि बीते समय में हमने यूएल की एक भविष्यवाणी की सारी आयतों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसके बारे में हम आज तक जो मानते आए हैं उसे अब बदलने की जरूरत है। आइए इस बारे में चर्चा करें और देखें कि बदलाव की जरूरत क्यों है। पैराग्राफ 3 और 4। सवाल, अब तक हम यूएल 2 के 7 से 9 का क्या मतलब समझते थे? यूएल 2 के 7 से 9 में लिखा है, वो योद्धाओं की तरह बड़े चले आते हैं, सैनिकों की तरह दीवार लांग जाते हैं, हर कोई अपनी राह पर चलता है, वो उसे नहीं हटता, वो एक दूसरे को धक्का नहीं देते, हर कोई अपनी राह पर सीधे आगे बढ़ता है, चाहे उनमें से कुछ हथियारों की मार से गिर जाएं, तो भी दूसरे अपनी पंक्ति नहीं तोड़ते, वो शहर में तेजी से घुसते हैं, शहरपनाह पर दौड़ते हैं, घरों पर चढ़ते हैं और चोर की तरह खिड़कियों से घुस जाते हैं। यूएल ने भविष्यवाणी की थी कि टिड्डियों का एक बड़ा झुंड इसराइल देश पर हमला करेगा और पूरे देश को तबाह कर देगा। यूएल ने देखा कि इन टिड्डियों के दांत और जबड़े शेर के जैसे हैं। उनके सामने जो भी दिखता है उसे वो चट कर जाती हैं। सालों से हम मानते आए हैं कि इस भविष्यवाणी में बताई गई टिड्डियां यहोवा के लोगों को दर्शाती हैं। वो प्रचार काम में पूरी तेजी से आगे बढ़ेंगे और उन्हें रोकना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि टिड्डियों के झुंड को। हम मानते थे कि यूएल 1 के 6 में बताया गया देश वो लोग हैं जो धर्मगुरुओं के चंगुल में हैं, और उस देश के तबाह होने का मतलब ये है कि हमारा प्रचार काम उन लोगों को हिलाकर रख देगा। अगर हम सिर्फ यूएल 2 का 7 से 9 पढ़ें तो लग सकता है कि यह भविष्यवाणी हमारे प्रचार काम के बारे में है, लेकिन अगर हम इस पूरी भविष्यवाणी को ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि इसका मतलब कुछ और है। ऐसा कहने की 4 वजह हैं। बदलाव की 4 वजह। पैराग्राफ 5 और 6। सवाल, इन आयतों पर ध्यान देने से क्या सवाल उठता है? क, यूएल 2 का 20। ख, यूएल 2 का 25। पहली वजह, ध्यान दीजिए कि यहोवा ने टिड्डियों के कहर के बारे में कहा था, मैं उत्तर से आने वाले को यानी टिड्डियों को तुमसे दूर भगा दूंगा। यूएल 2 का 20। अगर टिड्डियां यहोवा के साक्ष्यों को दर्शाती हैं, तो यहोवा उन्हें क्यों भगाएगा? वो तो यीशु की आज्ञा मानकर प्रचार करते हैं और चेला बनाने का काम करते हैं। बेशक यहोवा अपने वफादार लोगों को नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को भगाएगा जो उसके लोगों को सताते हैं। दूसरी वजह जानने के लिए यूएल 2:25 पर ध्यान दीजिए। वहां यहोवा कहता है, जितने साल मेरी भेजी हुई विशाल सेना ने दल वाली टिड्डी, बिन पंखों वाली टिड्डी, भूखी टिड्डी और कुतरने वाली टिड्डी ने नुकसान किया, उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। ध्यान दीजिए, यहोवा कहता है कि टिड्डियों ने जो नुकसान किया है उसकी वो भरपाई कर देगा। अगर टिड्डियां राज के प्रचारकों को दर्शाती हैं, तो इसका यह मतलब होगा कि उनके प्रचार करने से लोगों का नुकसान होता है, मगर ये सच नहीं है। हमारा संदेश तो लोगों को फायदा पहुंचाता है। यहां तक कि अगर दुष्ट लोग भी हमारे संदेश को स्वीकार करेंगे तो वह पश्चाताप करेंगे और उनका भला होगा, उनकी जान बच जाएगी। पैराग्राफ 7। सवाल, इसके बाद मैं अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा, इन शब्दों से क्या पता चलता है? यूएल 2:28-29 में लिखा है, इसके बाद मैं हर तरह के इंसान पर अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग खास सपने देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। उन दिनों मैं अपने दास दासियों पर भी अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा। तीसरी वजह जानने के लिए ध्यान दीजिए कि भविष्यवाणी के मुताबिक घटनाएं किस क्रम में घटेंगी। यहोवा कहता है, इसके बाद मैं अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा। इसका मतलब है कि टिड्डियां अपना काम पूरा कर लेंगी और उसके बाद यहोवा अपनी पवित्र शक्ति उंडेलेगा। इससे पता चलता है कि यहां बताई गई टिड्डियां यहोवा के लोगों को नहीं दर्शाती। अगर वो यहोवा के लोगों को दर्शाती तो उनका प्रचार काम पूरा होने के बाद यहोवा क्यों उन्हें पवित्र शक्ति देता? वो तो उसकी शक्ति के बिना ये काम कर ही नहीं सकते। यहोवा की पवित्र शक्ति की मदद से ही वो बरसों से ये काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनका काफी विरोध किया गया है और कई बार उन पर रोक भी लगा दी गई। पैराग्राफ 8। सवाल, प्रकाशित वाक्य 9:1-11 में बताई टिड्डियां किन्हें दर्शाती हैं? प्रकाशित वाक्य 9:1-11 में लिखा है, पांचवें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी और मैंने एक तारा देखा जो आकाश से धरती पर गिरा था, और उसे अथाकुंड के गड्ढे की चाबी दी गई, और उसने अथाकुंड के गड्ढे को खोला और उसमें से ऐसा धुआं निकला जैसे किसी बड़े भट्टे से निकलता है, और उसके धुएं से सूरज पर और हवा में अंधकार छा गया, और उस धुएं में से टिड्डियां निकलकर धरती पर आईं और उन्हें वैसी ही शक्ति दी गई जैसी शक्ति पृथ्वी के बिच्छुओं में होती है। उनसे कहा गया कि वो न तो पृथ्वी की हरियाली को न ही किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और टिड्डियों को यह अधिकार दिया गया कि वो लोगों को 5 महीने तक दर्द से तड़पाती रहें, मगर उन्हें जान से न मारें। और लोगों को ऐसा दर्द हो रहा था जैसे बिच्छू के डंक मारने से होता है। और उन दिनों में लोग मरना चाहेंगे मगर उन्हें मौत नहीं आएगी, वो मौत के लिए तरसेंगे मगर मौत उनसे दूर भागेगी। और वो टिड्डियां लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों जैसी दिख रही थीं। उनके सिर पर सोने के ताज जैसा कुछ था और उनके चेहरे इंसानों के चेहरे जैसे थे, मगर उनके बाल औरतों के बालों जैसे लंबे थे और उनके दांत शेरों के दांतों जैसे थे। उनके कवच लोहे के कवच जैसे थे और उनके पंखों की आवाज ऐसी थी जैसे रथ और घोड़े युद्ध के लिए दौड़े चले जा रहे हों। और उनकी पूंछ पर बिच्छुओं जैसे डंक थे और उनकी पूंछ में लोगों को 5 महीने तक तड़पाने की शक्ति थी। अथाकुंड का स्वर्गदूत उनका राजा था। इब्रानी में उसका नाम अब्दोन है, मगर यूनानी में उसका नाम अपुलियन है। अब चौथी वजह पर ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य किताब में भी टिड्डियों के कहर के बारे में एक भविष्यवाणी दी गई है जो कि प्रचार काम को दर्शाती है। इसलिए हम मानते थे कि यूएल की भविष्यवाणी का भी वही मतलब होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि टिड्डियों के चेहरे इंसानों के चेहरों जैसे थे और उनके सिर पर सोने के ताज जैसा कुछ था। प्रकाशित वाक्य 9:7। वो टिड्डियां उन लोगों को यानी परमेश्वर के दुश्मनों को तड़पाती हैं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 9:4-5। वो 5 महीने तक ऐसा करती हैं जो कि एक टिड्डी का जीवन काल होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में बताई टिड्डियां यहोवा के अभिषिक्त सेवकों को दर्शाती हैं। वो निडर होकर इस दुष्ट संसार को यहोवा के न्याय का संदेश सुनाते हैं। इसलिए दुनिया के लोगों को उनका संदेश चुभता है। पैराग्राफ 9। सवाल, युएल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में बताई टिड्डियों में क्या फर्क है? ये सच है कि प्रकाशित वाक्य और युएल में दी गई भविष्यवाणी की कुछ बातें मिलती जुलती हैं, मगर इनमें कुछ बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक फर्क यह है कि युएल की भविष्यवाणी में कहा गया है कि टिड्डियां पेड़ पौधों को चट कर जाएंगी, लेकिन प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में टिड्डियों को बताया जाता है कि वह पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। प्रकाशित वाक्य 9:4। युएल ने दर्शन में देखा कि टिड्डियां उत्तर दिशा से आएंगी, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बताई टिड्डियां अथाकुंड से ऊपर आ रही थी। युएल की भविष्यवाणी में कहा गया था कि टिड्डियों को भगा दिया जाएगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में बताया गया है कि यहोवा टिड्डियों को भगाता नहीं, बल्कि उन्हें अपना काम पूरा करने देता है। ये टिड्डियां ऐसे लोगों को दर्शाती हैं जिनके काम से यहोवा खुश है। बाइबल में ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता कि यहोवा उनसे नाखुश है। कुछ और जानकारी टिड्डियों के बारे में। भविष्यवाणियां एक जैसी मगर अलग अलग। युएल 1:4, 2:7-9 और 20। ये टिड्डियां उत्तर से आएंगी, पेड़ पौधों को चट कर जाएंगी, इन्हें भगा दिया जाएगा। इनका मतलब बेबीलोन की सेना है जिसने ईसा पूर्व 607 में यरूशलेम का नाश कर दिया था। प्रकाशित वाक्य 9:1-11। ये टिड्डियां अथाकुंड से ऊपर आएंगी। इनसे कहा जाता है कि वो पेड़ पौधों का नुकसान ना करें, ये अपना काम पूरा करेंगी। इनका मतलब यहोवा के अभिषिक्त सेवक हैं जो निडर होकर उसके न्याय का संदेश सुनाते हैं। जानकारी समाप्त। पैराग्राफ 9 से संबंधित तस्वीर के बारे में। युएल की भविष्यवाणी का मतलब यह है कि एक सेना हमला करेगी। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी का मतलब यह है कि प्रचार काम जोश से किया जाएगा। पैराग्राफ 10। सवाल, बाइबल से मिसाल देकर समझाइए कि एक ही चीज कैसे दो अलग बातों को दर्शा सकती है। तो जैसा हमने देखा, युएल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में बहुत बड़ा फर्क है। युएल जिन टिड्डियों की बात कर रहा था और प्रकाशित वाक्य में जिन टिड्डियों की बात की गई है, वो दोनों अलग बातों को दर्शाती हैं। मगर आप शायद सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब दोनों ही भविष्यवाणियों में टिड्डियों की बात की गई है तो वो दो अलग बातों को कैसे दर्शा सकती हैं? जवाब के लिए गौर कीजिए कि बाइबल में कुछ पशु पक्षी अलग अलग आयतों में अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। मिसाल के लिए, प्रकाशित वाक्य 5:5 में यीशु को यहूदा गोत्र का शेर कहा गया है, वहीं दूसरी तरफ पहला पत्रस 5:8 में शैतान को भी गरजता हुआ शेर कहा गया है। हमने ऐसी चार वजह देखी जिसे पता चलता है कि युएल की भविष्यवाणी के बारे में हम अब तक जो मानते थे वो सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका सही मतलब क्या होगा। भविष्यवाणी का मतलब। पैराग्राफ 11। सवाल क, युएल की भविष्यवाणी में बताई टिड्डियों का क्या मतलब है? सवाल ख, युएल 1:6 और 2:1, 8 और 11 से कैसे इस बात का सबूत मिलता है? युएल की पूरी भविष्यवाणी का ध्यान से अध्ययन करने से पता चलता है कि युएल एक सेना के हमले की बात कर रहा था। युएल 1:6 और 2:1, 8 और 11 से पता चलता है कि टिड्डियों का मतलब बेबीलोन की विशाल सेना है जो बगावती इसराइलियों को सजा देने के लिए उन पर हमला करेगी। ऐसा कहने की एक वजह यह है कि युएल ने बताया कि यह सेना उत्तर से आने वाली है। युएल 2:20। बेबीलोन की सेना वाकई उत्तर दिशा से ही इसराइल पर हमला करती। एक और वजह यह है कि उस सेना का हमला टिड्डियों के हमले जैसा होगा। वो इसलिए क्योंकि टिड्डियों का दल एक व्यवस्थित तरीके से हमला करता है। यूएल ने बताया कि हर कोई यानी हर सैनिक अपनी राह पर सीधे आगे बढ़ेगा। वो शहर में तेजी से घुस जाएंगे, शहरपना पर दौड़ेंगे, घरों पर चढ़ जाएंगे और चोर की तरह खिड़कियों से घुस जाएंगे। यूएल 2:8 और 9। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बेबीलोन की सेना का हमला कैसा रहा होगा? जहां देखो वहां सैनिक ही सैनिक हैं, छिपने की कोई जगह नहीं, उनकी तलवार से कोई नहीं बच सकता। पैराग्राफ 12। सवाल, टिड्डियों के बारे में युएल की भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई? ईसा पूर्व 607 में बेबीलोन के लोगों ने वाकई टिड्डियों की तरह यरूशलेम पर हमला किया। बाइबल बताती है, कसदियों यानी बेबीलोन के राजा ने जवानों को तलवार से मार डाला। उसने लड़कों, लड़कियों, बूढ़ों, बीमारों सबको मार डाला। किसी पर भी तरस नहीं खाया। परमेश्वर ने सब कुछ उस राजा के हाथ में कर दिया। उसने सच्चे परमेश्वर के भवन को जला दिया। यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ डाली। उसकी सारी किलेबंद मीनारें जला दीं और वहां की एक एक कीमती चीज नाश कर दी। दूसरा इतिहास 36 का 17 और 19। जब बेबीलोन के लोगों ने इसराइल देश को तबाह कर दिया तो उसका हाल देखकर लोग कहते थे, ये ऐसा वीरान हो गया है कि यहां ना इंसान है ना जानवर, और ये कसदियों के हवाले कर दिया गया है। यर्मिया 32 का 43। पैराग्राफ 13। सवाल, यर्मिया 16 के 16 और 18 का मतलब क्या है? यूएल के भविष्यवाणी करने के 200 साल बाद यहोवा ने बेबीलोन के हमले के बारे में यर्मिया से भी एक भविष्यवाणी करवाई। इस भविष्यवाणी में उस हमले के बारे में कुछ और बातें बताई गईं। यहोवा ने बताया कि दुश्मन आकर ऐसे हर इसराइली को ढूंढ निकालेंगे जो दुष्ट काम करते थे। भविष्यवाणी में बताया गया था, यहोवा ऐलान करता है, देखो मैं बहुत से मछुआरों को बुलवाऊंगा और वो उनकी मछुआई करेंगे। इसके बाद मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊंगा और वो हर पहाड़ और हर पहाड़ी पर और चट्टानों की दरारों में उनका शिकार करेंगे। मैं उनके गुनाह और उनके पाप का उनसे पूरा बदला चुकाऊंगा। इन आयतों का यह मतलब है कि इसराइली अपनी जान बचाने के लिए चाहे समुन्द्र में जाते या जंगल में, वो दुश्मन के हाथ से बच नहीं पाते। बेबीलोन के लोग मछुआरों और शिकारियों की तरह उन्हें पकड़ लेते। यर्मिया 16 का 16 और 18। सब कुछ पहले जैसा। पैराग्राफ 14। सवाल, यूएल 2 के 28 और 29 में बताई भविष्यवाणी कब पूरी हुई? यरूशलेम के नाश के बारे में बताने के बाद यूएल एक अच्छी खबर सुनाता है। वो बताता है कि इसराइल देश की जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी और खाने पीने की भरमार होगी। फिर एक लंबे अरसे बाद भविष्य में सच्चाई की खुराक भी बहुतायत में मिलेगी। यहोवा ने भविष्यवाणी की, मैं हर तरह के इंसान पर अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। उन दिनों मैं अपने दास दासियों पर भी अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा। यूएल 2 का 28 और 29। ये भविष्यवाणी इसराइलियों के अपने देश लौटने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 600 साल बाद ईस्वी सन 33 में पूरी हुई। उस साल पिंतेकुस्त के दिन यहोवा ने अपने लोगों पर पवित्र शक्ति उंडेली। ये हम कैसे जानते हैं कि वो भविष्यवाणी उसी समय पूरी हुई? पैराग्राफ 15। सवाल क, प्रेषितों 2 के 16 और 17 में पत्रस ने यूएल 2 के 28 और 29 का हवाला देते समय कौन से अलग शब्द कहे? सवाल ख, इससे क्या पता चलता है? ईस्वी सन 33 के पिंतेकोस्त के दिन सुबह के करीब 9 बजे एक अनोखी घटना घटी। जब परमेश्वर ने अपने कुछ लोगों पर पवित्र शक्ति उंडेली तो एक चमत्कार हो गया। वो अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर के शानदार कामों के बारे में बोलने लगे। प्रेषितों 2 का 11। तब पत्रस ने यूएल 2 के 28 और 29 की भविष्यवाणी का हवाला देकर कहा कि इस घटना से वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। मगर उसने उस भविष्यवाणी का हवाला देते समय कुछ ऐसे शब्द कहे जो यूएल के शब्दों से अलग थे। प्रेषितों 2 के 16 और 17 में लिखा है, इसके बजाय ये वही हो रहा है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यूएल ने बताया था। परमेश्वर कहता है, मैं आखिरी दिनों में हर तरह के इंसान पर अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बुजुर्ग खास सपने देखेंगे। पत्रस ने शुरुआत में कहा आखिरी दिनों में, जबकि यूएल ने शुरुआत में कहा था इसके बाद। यूएल के शब्द इसके बाद का मतलब है इसराइलियों के अपने देश लौटने के सदियों बाद पवित्र शक्ति उंडेली जाती, और पत्रस के शब्द आखिरी दिनों में का मतलब है यरूशलेम और उसके मंदिर के आखिरी दिनों में ऐसा हुआ। जी हां, इसराइलियों के देश लौटने के सदियों बाद ईस्वी सन 33 में चेलों पर पवित्र शक्ति उंडेली गई, जब यरूशलेम और उसके मंदिर के आखिरी दिन चल रहे थे। पैराग्राफ 16। सवाल क, पहली सदी में जब पवित्र शक्ति उंडेली गई तो उसके बाद खुशखबरी कहां तक फैली? सवाल ख, आज कितनी दूर तक फैल गई है? पहली सदी में जब पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर ने मसीहों पर पवित्र शक्ति उंडेली तो उस दिन से प्रचार काम तेजी से बढ़ने लगा। ईस्वी सन 61 के आते आते तकरीबन पूरी दुनिया में खुशखबरी फैल गई। यही वजह है कि उस साल के आसपास पौलुस ने कुलुसियों के नाम खत में लिखा कि खुशखबरी का प्रचार पूरी दुनिया में किया जा चुका है। कुलुसियों 1:23। पौलुस ने जब पूरी दुनिया कहा तो उसका मतलब था दुनिया के वो सभी इलाके जहां पौलुस और दूसरे मसीही जा सकते थे। हमारे दिनों में पवित्र शक्ति की मदद से खुशखबरी और भी दूर दूर तक यानी पृथ्वी के छोर तक फैल गई है। प्रेषितों 13:47। कुछ और जानकारी, मैं अपने सेवकों पर पवित्र शक्ति उंडेलूंगा। ईस्वी सन 33 के पिंतेकुस्त के दिन करीब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु के चेले बन गए। इसके तुरंत बाद वो यीशु के बारे में दूसरों को सच्चाई बताने लगे। क्या यहोवा ने उनकी मेहनत पर आशीष दी? बेशक दी। इसलिए हजारों लोग मसीह के चेले बन गए। हजारों का मतलब कितने हजार? बाइबल में नहीं लिखा है कि उनकी गिनती ठीक ठीक कितनी थी, मगर ऐसा मालूम पड़ता है कि पहली सदी के खत्म होने तक उनकी गिनती 144,000 से बहुत कम थी। उस दौर में यहोवा ने राज के वारिस बनने के लिए कुछ स्त्रियों और पुरुषों को चुना था, मगर वह ज्यादातर अभिषेक जनों को 19वीं सदी के आखिरी सालों से चुनने लगा। फिर भी पहली सदी में मसीहों की गिनती जिस तरह बढ़ी, उससे पता चलता है कि यहोवा ने शुरू के उन चेलों पर अपनी पवित्र शक्ति उंडेली थी। क्या आधुनिक समय में भी यहोवा ने अपने सेवकों पर पवित्र शक्ति उंडेली? बेशक। एक सबूत पर गौर कीजिए। अब तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं उसके अनुसार 1919 में पूरी दुनिया में प्रचारकों की गिनती 6000 से भी कम थी, फिर भी यहोवा ने उनके प्रचार काम पर बहुत आशीष दी। सन 1983 से हर साल 144,000 से ज्यादा लोग बपतिस्मा पाकर यहोवा के साक्षी बन रहे हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहोवा आज भी अपना यह वादा पूरा कर रहा है, मैं उन पर अपनी पवित्र शक्ति उंडेलूंगा। यूएल 2:28-29। जानकारी समाप्त। क्या बदला है? पैराग्राफ 17। सवाल, टिड्डियों के बारे में यूएल की भविष्यवाणी का अब हमने क्या मतलब समझा है? टिड्डियों के बारे में यूएल 2:7-9 की भविष्यवाणी को अब हमने सही सही समझा है। हमने देखा कि इन आयतों में हमारे प्रचार काम की बात नहीं की जा रही है। इसके बजाय इस भविष्यवाणी का मतलब यह है कि बेबीलोन की सेना यरूशलेम पर हमला करेगी। ये भविष्यवाणी ईसा पूर्व 607 में पूरी हुई थी। पैराग्राफ 18। सवाल, क्या प्रचार के मामले में कुछ बदलाव हुआ है? लेकिन जहां तक हमारे प्रचार काम की बात है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम हमेशा की तरह हर जगह और हर तरीका आजमाकर लोगों को खुशखबरी सुना रहे हैं। चाहे कोई सरकार हम पर पाबंदी लगा दे, फिर भी हम ये काम नहीं रोकने वाले। यहोवा की मदद से हम पहले से ज्यादा जोश और हिम्मत से प्रचार कर रहे हैं। रही बात बाइबल की भविष्यवाणियों की, हमें यहोवा पर भरोसा है कि हमेशा की तरह वो सही समय पर इन्हें ठीक ठीक समझने में हमारी मदद करेगा और सच्चाई की पूरी समझ देगा। यूहन्ना 16:13। क्या बता सकते हैं? कुछ भविष्यवाणियों के बारे में हम पहले जो मानते थे उसमें कभी कभी फेरबदल की जरूरत क्यों होती है? यूएल 2:7-9 में क्या भविष्यवाणी की गई थी? आप क्यों मानते हैं कि जब भविष्यवाणियों के मतलब में कोई फेरबदल होता है तो इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है? गीत 97। जिंदगी यह के वचनों पे है टिकी। लेख समाप्त।